मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। हम लोग इधर विचार नहीं करते हैं, हमको ये जीवन बहुत आराम से मिल गया ऐसा दिखता है। मनुष्य जीवन के एक क्षण की कीमत लाख रुपए भी नहीं है। ये बात आज से 70 वर्ष पहले कही, जब लाख रुपए की बड़ी कीमत थी। एक क्षण की कीमत लाख रुपए भी नहीं है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि जो काम बहुत श्रेष्ठ है और जिस काम के लिए मानव जीवन मिला है, उसी काम में समय बिताना चाहिए। ये समय फिर कहां मिलेगा? यदि समय मिल गया और मानव शरीर नहीं मिला, तो वो समय हमारे क्या काम का? हमारा सबसे बड़ा काम तो यह है कि सारे दुखों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो, अतः इस काम में लगाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से विचार करो, हमारे मरने के बाद हमारे दूसरे काम सारे इंतजाम दूसरे लोग कर लेंगे। दुकान का काम अधूरा है तो आपके बाद संभाल लेंगे, मकान का काम अधूरा है तो दूसरे लोग संभाल लेंगे, पर इस खास काम को कौन करेगा? क्योंकि ये अपने लिए ही करना है, अपने को ही करना है, इसी काम के लिए अपने आए हैं। उत्तराधिकारी तो धन और मकान संभाल लेंगे, और ये काम जितना बाकी रह जाएगा वो रह ही जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी काम यही है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा है, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए सियावर रामचंद्र जी की जय। लोग क्या कहेंगे, देवता वगैरह सब हमको मूर्ख कहेंगे। रोने से भी काम नहीं बनेगा, कुछ भी कर लेंगे कुछ भी काम नहीं बनेगा, शरीर छूटने के बाद कुछ भी नहीं हो सकेगा। अभी तो हम रोएंगे भगवान के सामने तो काम बन जाएगा, हंसेंगे तो काम बन जाएगा, भजन करेंगे तो काम बन जाएगा। जो हम करेंगे वो भगवान के सामने करेंगे, भगवान के लिए करेंगे तो काम बन जाएगा, पर आगे क्या होगा? इसलिए जब तक ये शरीर ठीक है तब तक इस काम को कर लेना चाहिए। एक क्षण भी बिना भगवत स्मरण के चला गया तो पुत्र मरण के समान दुख करना चाहिए कि हमारा बेटा मर गया। पुत्र तो फिर भी पैदा हो जाएगा, परंतु ये जन्म फिर थोड़ा ही मिलेगा। सज्जनों, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद ये जन्म मिला है। ऐसे मौके को पाकर जो खो देता है वो महामूर्ख है, मूर्खों का सरदार है। आयु रूपी धन की रक्षा करो, दूसरे धन के लिए तो लोभी बनते हो, पर इस धन के लिए लोभ करना चाहिए इधर ध्यान ही नहीं देते। लोभी आदमी धन को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय समझता है। इसी तरह इस समय में हमें भी इस काम को प्राणों के समान और प्राणों से भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिए। एक मिनट भी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। उत्तरोत्तर श्रेणी का भजन करना चाहिए। आप एक बार भजन में लग करके देखो तो सही, आपको खुद को लगेगा यह समय मेरा सार्थक हो गया। जो मैंने समय बिताया कितनी मूर्खता की, कल जो साधन हुआ आज उससे भी ज्यादा करेंगे। काम वो करना चाहिए जो आज तक नहीं किया, क्योंकि आज का दिन कल का काम करने के लिए थोड़ा ही है। कल का काम कल खत्म हो गया, आज उससे आगे करना चाहिए। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जिस तरह से हो आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सारी शक्ति इसी में ही लगा देनी चाहिए। उत्तरोत्तर बढ़ता रहे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमने अभी एक बात कही कि 1,00,000 रुपए में भी एक क्षण नहीं मिलता, ये बात भी हमने कोई बहुत बढ़िया नहीं कही, क्योंकि 1,00,000 रुपए भी एक नाम की कीमत से आका ही नहीं जा सकता है। एक नाम की कीमत का कोई यहां संसार में पदार्थ है ही नहीं, और कितनी भी संख्या में वो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की प्राप्ति के काम को छोड़कर फालतू समय में समय लगाना, फालतू काम में समय लगाना, ये आपके लिए कितने बड़े घाटे की बात हो रही है। जैसे किसी के पीठ के पीछे सांप बैठा हुआ हो और उसको पता ना हो तो दूसरे लोग, अरे तेरे पीठ पर सांप है, तो वो बहुत जल्दी उसको उससे बचना चाहेगा। इसी प्रकार से मौत हमारे पास में आई हुई है, इसको हम कैसे भूल रहे हैं। बार बार विचार करना चाहिए, ये मानव शरीर हमको किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। शराबी की तरह मुंह में पड़कर समय नहीं बिताना चाहिए। कितनी बड़ी कमाई, कितना बड़ा धन, कितनी बड़ी वस्तु हमारे हाथ से हट करके जा रही है, आपको विचार ही नहीं आता। जैसे कोई आदमी अपने हाथ में पत्थर लेकर फेंकता है, वो समझता है कि मैं पत्थर फेंक रहा हूं, अरे पत्थर नहीं, ये हीरा है, हीरा। कोई हीरो को पत्थर समझ करके फेंकता है तो जानकार आदमी उसको संभालते वरी ये क्या करता है, कितना नुकसान हो रहा है। हीरा भी एक पत्थर ही है, कोई खास नुकसान नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति सुलभ होकर जो आपके हाथ से निकल रही है, कितने बड़े दुख की बात है। 1,00,000 रुपए क्या, हीरा क्या, हम तो कहते हैं त्रिलोकी का राज्य भी भगवान के एक नाम के समान नहीं है। नाम सत्य है। इसी हालत में 1,00,000 काम छोड़ करके भजन करना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान, इस भजन के बदले में मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं, केवल भजन चाहता हूं। शरीर धन आदि के लिए भगवान से कि महात्मा से कभी कुछ नहीं याचना करनी चाहिए। शरीर आदि तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जिस परिस्थिति में है रहेगा और चला जाएगा। भगवान जैसे दातार से शरीर के लिए मांगे, ये कितने घाटे की बात है। स्वप्न का त्रिलोकी का राज्य जागने पर बेचो तो लोग पागल कहेंगे। कोई कहे कि रात में हमको स्वप्न में राज्य मिला, वो राज्य हम तुमको दे देते हैं, बेच देते हैं। लोग है तो नहीं तुम्हारे पास, क्या बेच रहे हो? कि स्वप्न का राज्य है, उसकी कोई कीमत देगा? पांच पैसा भी नहीं देगा, कोई पांच पैसा भी नहीं देगा। इसी प्रकार परमात्मा सत्य वस्तु है, संसार असत्य वस्तु है। स्वप्न की तरह परमात्मा के सामने इसकी क्या कीमत है? ये जगत तो स्वप्न है। इन सब बातों को आप स्वयं सोचेंगे तो काम बनेगा। हम तो कह सकते हैं, इसके आगे हमारी शक्ति रुक जाती है। आगे का काम तो आपको ही बनाना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति इस जीवन के रहते हुए आपको जी तोड़ परिश्रम करना भी पड़े तो करनी चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जो खोना चाहिए, ऐसी चेष्टा करो। दुख पाना सुख पाना तो सब शरीरों में होता है। दुखों के संयोग का वियोग, यही तो योग है। यह निश्चय कर्तव्य और कटिबद्ध चित्त से करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। खूब कसकर काम करो इस बात के लिए। जैसे लोभी आदमी पैसे के लिए कितना बड़ा झंझट मोल ले लेता है, ऐसे इस काम के लिए भी कोई झंझट भी मोल लेना पड़े तो ले। पर इसमें तो सब झंझट दूर होते हैं। लौकिक हानि हो जाए तो कोई बात नहीं, पर यह हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए आप अकेले हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। जिनको आप अपना साथी समझते हो, जिनके बीच में रात दिन बैठ बैठ करके हंसते हंसते समय निकालते हो, परमात्मा की प्राप्ति में तो यही सबसे बड़े बाधक है। सबसे संबंध तोड़ करके भगवान में लग जाओ। जिनके निरंतर भगवान की स्मृति रहती है, उनके अंत समय में भगवान की स्मृति जागृत होती है। अपनी जितनी शक्ति है उतनी लगा दो, आगे भगवान जाने। मरने के बाद न जाने कहां हमारी दशा होगी, इस बात को अभी सोचोगे तो पार पड़ेगी। जितने पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता ये आपको दिखते हैं, इनको देख देख करके मन में विचार करना चाहिए कि ये हम ही थे पहले। ये वृक्ष वगैरह हमारे ही समान मनुष्य थे। ये पशु पक्षी जल का थल का कोई भी कीड़ा, ये सब मनुष्य थे और वो अपने उद्देश्य से चूक गए। उनकी ये दशा हुई, ऐसी दशा हमारी हो जाएगी। भगवान ने आपके सामने सब उदाहरण रख दिया है, फिर भी हम नहीं चेत करें तो कैसे चेत होगा? इसलिए समय रहते अपना काम जल्दी कर लेना चाहिए। जब वैराग्य की बात कही जाए तो हृदय में वैराग्य की लहरें उठनी चाहिए। महात्मा लोग वन में प्रवेश कर जाते हैं, वहां कोई चीज नहीं दिखती, वहां वो वैराग्य को पसार देते हैं। हम लोग अपने देशों में चले जाते हैं, वहां पर भी वट वृक्ष वगैरह का ध्यान करने से वैराग्य होता है। मैं तो यही समझता हूं कि हम लोगों को कोई वैराग्यवान आदमी उपदेश दे तो कितना अच्छा रहे। मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूं, मैं तो स्वयं गृहस्थी हूं। कोई बड़ा भारी विरक्त पुरुष हो, संसार से उपराम हो, और वो एक आदेश देवे, उस आदेश में हम उपराम हो जाए, जीवन पर्यंत वैराग्य का नशा बना रहे, ऐसा संभव है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लोगों को कभी कभी सत्संग में वैराग्य चढ़ता तो है, पर जैसे बुखार उतर जाता है ऐसे आपके भी वो वैराग्य का नशा उतर जाता है। तीव्र वैराग्यवान महापुरुष जब हमारे सामने से गुजरते हो, उनकी छाया भी पड़ जाए तो भी वैराग्य जागृत होता है। उपरति और वैराग्य ये ऐसे शब्द हैं जिनसे मनुष्य के वैराग्य हो जाए। वैराग्य शब्द ही ऐसे, उपरति शब्द ही ऐसा है जिसे वैराग्य हो जाए। अब हमको ऐसे महात्मा न मिले तो क्या करें? तो भाई प्रभु का ध्यान करो, ध्यान में आह्वान करो, हे प्रभु बचाओ, हमको बचाओ, हम अनाथ हुए हुए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, अब आप ही सुनने वाले हो। ओहो प्रभु आ गए, हमारे सामने आ गए। और फिर जैसे बच्चा रोए ऐसे भगवान के लिए रोना चाहिए। फिर और मस्त हो जाए तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए मन ही मन में, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे महाराज, हे प्रभु दीन दयालु, हमारे हृदय में आपका ध्यान कायम रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। वशिष्ठ जी ने भगवान से यही प्रार्थना की थी, यही भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान दर्शन मत दो भले ही, पर हमारा ध्यान आप में लगा रहे। ध्यान के लिए पहले आप आराम से सुखपूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ जाओ, फिर आह्वान करो भगवान का, फिर कहो मानो भगवान आ गए, अब खूब मस्त हो जाओ। अब जो मंद मंद वायु चलती है उस वायु के अंदर भगवान की सुगंध ले ओ, और ऐसे मस्त हो जाओ कि बड़ी शांति मिल रही है, ये भगवान की शांति है, इसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है, आप थोड़ा करके देखो शांति मिलेगी। यदि ऐसे करते मृत्यु हो जाए तो आनंद मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ऐसी अवस्था में ही हमारी मौत हो जाए। मन को सब ओर से हटाकर उपराम होकर भगवान में लगा दे, इसी का नाम मच्चित्त है। युक्त का मतलब है कि वही मन को ठहरा दे, फिर किसी चिंतन में न ले जाए, कोई चिंतन आ जाए तो कि वो भी भगवान का ही रूप है। आप ये समझो कि हमारे मन में जो आता है वो भगवान है, उसमें भगवान का रूप देखो। जैसे आपको कोई कह दे कि आपके मकान में धन गड़ा हुआ है, तो आप जिस कमरे को खोलते हो उसी में धन की तरफ दृष्टि जाती है कि यहां धन है, यहां धन है, यहां धन है। तो जैसे आपके मन के अंदर बैठा हुआ धन मकान के प्रत्येक कमरे में दिखाई देता है, ऐसे मन के हर एक चिंतन में आपको भगवान दिखने चाहिए। इस मन रूपी भंवरे को भगवान के मुख कमल पर लाकर रख देना चाहिए, फिर मस्त हो जाओ। फिर अपने आप का भी अभाव कर दो कि मैं कुछ नहीं है, बस एक भगवान का मुख है, मैं देखने वाला हूं और वो दिखाई देने वाले हैं, ये भाव भी मिटा दो। भगवान की जो मधुर मूर्ति है, प्रेममयी मूर्ति है, मुस्कुराती हुई मूर्ति है, छल छलाती आंखों वाली मूर्ति है, उस मूर्ति में तन्मय हो जाओ। न देश का ध्यान, न काल का ध्यान, न अपने शरीर की वृत्ति जाए कहीं, कहीं न जाए, ये मैंने आपको सूत्र रूप से बताया है। प्रेम और ज्ञान ये दोनों ही भगवान का स्वरूप है। आह्वान करो, ज्ञान के रूप में भी वही आता है। अभी जैसे पद आया ना, है घट भीतर न्यारो को न्यारो, वो ज्ञान की दृष्टि से गई, ज्ञान के रूप में भी वही है। शरीर के भीतर जो ज्ञान की बड़ी भारी दीप्ति है, वो रोम रोम में व्याप्त होती है, बड़ा भारी, उसमें भी प्रकाश दिखता है। सूर्य की रोशनी से ये प्रकाश अनंत गुना बढ़कर है, चंद्रमा से भी अनंत गुना शीतल है। मूर्तिमान दिखता है तो उसको साकार रूप समझो। भगवान कैसे है इसको कौन बताए? धनुष बाण के सहित भगवान आ गए तो राम रूप से आ गए, आनंद आ गए, आनंद। मुरली के लेकर आ गए तो ये भगवान कृष्ण आ गए, सब एक है। ऐसी माधुरी मूर्ति का ध्यान करता रहे और अपने आप को भुला दे। भगवान से प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात करें अंतिम बात। हे भगवान, आप चाहे तो सारे संसार का एक क्षण में ध्यान लगवा सकते हैं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसे करके भगवान को पुकारना चाहिए। फिर दोबारा बता दे, भगवान से कहो, प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप चाहें तो सारे संसार का एक क्षण में ध्यान लगवा सकते हैं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसे भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और कृपालु दयालु समझ करके प्रार्थना करनी चाहिए।